नमस्कार भारत, आज है 20 मार्च दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन और समीकरण बनाने की कोशिश।
मेरा कर्तव्य क्या है कि हम अपने संकल्प पत्र के आधार पर सबको साथ लेकर बगैर क्षेत्र संप्रदाय जाति के पूरा काम कर सकें उत्तर प्रदेश के विकास में, इसकी संकल्पना है हम लोग की।
गोरखपुर की मुस्लिम जनता क्या उम्मीद लगा रही है योगी आदित्यनाथ से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्र के आश्वासन के बाद जाटों ने स्थगित किया दिल्ली मार्च।
जो हमारी मांगे थी वे सभी मांगे मुख्यमंत्री और केंद्र के दो मंत्री थे, उनसे वार्ता होने के बाद सभी मांगों पर सहमति बन गई।
सुनिएगा वसतुल्ला खान की डायरी और साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ कल ले ली। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने भी शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में 22 कैबिनेट मंत्रियों और 22 राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है। अमेरिका की कांग्रेस की खुफिया कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो नहीं मानते कि पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तक इसके कोई सबूत उन्होंने नहीं देखे हैं। इससे पहले कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष डेविड न्यून्स ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर फोन टैपिंग कराने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोप के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पत्रकार के सवाल पर, जिसमें पूछा गया था कि क्या रूसी हस्तक्षेप के कोई सबूत देखे हैं, तो डेविड न्यून ने ये कहा। ये डेविड न्यून थे जो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे कोई सबूत नहीं देखे हैं जिससे पता चले कि रूसी हस्तक्षेप किया गया था। खुफिया एजेंसी एफबीआई के निदेशक जेम्स कूमी इस कमेटी के सामने पेश होकर सबूत देने वाले हैं कि चुनाव में रूस ने हस्तक्षेप किया था या नहीं। इस बीच इसी कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्य एडम शिफ ने कहा है कि इस बात के सबूत हैं कि ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के बीच संपर्क था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया की सेना ने कहा है कि दमिश्क में विद्रोहियों के एक हमले को नाकाम कर दिया गया है। दमिश्क के जोबार जिले में सबसे तेज लड़ाई हुई है, जहां पर लड़ाई में सेना और विद्रोहियों के अलग अलग गुट शामिल हुए। सीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक विद्रोहियों ने खुफिया सुरंगों के जरिए हमला करके सेना को चौंका दिया। विद्रोही पुराने दमिश्क शहर के नजदीक अब्बासिद चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार में उनके गठबंधन सहयोगी और वित्त मंत्री मोशे कोहलान के साथ हुए समझौते से पीछे हट गए हैं, जिससे इसराइल में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है और वहां जल्दी चुनाव की संभावना बन रही है। इसराइल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की जगह नई संस्था लाने के मुद्दे पर दोनों के बीच असहमति बन गई थी, जिसके बाद ये राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पत्रकारों को इसके बारे में ये जानकारी दी। गठबंधन सरकार में आपसी सहमति से टिकी हुई होती है। हमारे गठबंधन में ये साफ था कि सभी पार्टियां मीडिया जैसे मुद्दों पर लिक्विड पार्टी के फैसले पर ही सहमति जताएंगी। इसमें आईबीए का मुद्दा भी शामिल था। ये थे बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने अपील की है कि ब्राजील के मीट निर्यातक उद्योग पर सड़ा हुआ मीट बेचने के आरोप का मतलब ये नहीं है कि ब्राजील के सभी उत्पाद असुरक्षित हैं। मिशेल टेमर ने यूरोप, अमेरिका और चीन के राजदूतों से मुलाकात कर ये कहा है कि सरकार ब्राजील से निर्यात होने वाले मीट की गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त है। हाल ही में आरोप लगाए गए थे कि ब्राजील की तीन बड़ी मीट पैक करने वाली कंपनियां कई सालों तक सड़ा मीट इस्तेमाल कर रही थीं। इस मामले की जांच जारी है। कंपनियों के अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा मीट निर्यात करने वाला देश है। बीबीसी समाचार।
A आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद बीजेपी सरकार की वापसी हुई है और इसका चेहरा बने हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने और कथित मुस्लिम विरोध के आधार पर सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाले आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहा कि समर्थक अति उत्साह न दिखाएं और भड़काऊ बयानों से बचें। और जहां तक मंत्रिमंडल के ताने बाने का सवाल है, तो वहां भी आदित्यनाथ अमित शाह के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाते नजर आए। सुनिए लखनऊ से सलमान रावी की रिपोर्ट।
17 मंत्री अति पिछड़ा वर्ग से, 7 ब्राह्मण, 7 ठाकुर, 7 वैश्य, 1 मुसलमान, जबकि 1 ब्राह्मण और 1 अति पिछड़े वर्ग के उप मुख्यमंत्री। कुछ इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को बैलेंस करने की कोशिश की। मंत्रिमंडल में जाट और कायस्थों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो क्या ये सब कुछ आने वाले 2019 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए किया गया है? जानकार मानते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया जिससे उसे अपनी जीत सुनिश्चित करने में आसानी रहे, चाहे वो वोटों का ध्रुवीकरण हो या फिर विकास की बात हो। जो प्रचार सिर्फ विकास के एजेंडे से शुरू हुआ था, वो जातिवाद से क्षेत्रवाद तक चला गया। राजनीतिक मामलों के जानकार योगेश मिश्रा कहते हैं,
देखिए एक्चुअली ऐसा है कि 2019 तो है ही, पर दो तरह के काम सरकार को करने होंगे, एक एडहॉक और एक फ्यूचरिस्टिक। 2019 उसके फ्यूचरिस्टिक एजेंडे का हिस्सा है, और अभी जो इन्होंने बनाया है जिसमें जाति संतुलन साधे हैं, क्षेत्र के संतुलन साधे हैं, कुछ सीटें खाली छोड़ दी हैं और उन सीटों पर फिर आगे ये करेंगे अनुमान के परफॉर्मेंस के इलाकों के हिसाब से, तो ये इनका एडहॉक अरेंजमेंट है। और ये हर सरकार में, पिछले 2-3 मैं ये देखता आया हूँ, हर सरकार में ऐसा होता रहा।
मगर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी का भी चेहरा बतौर मुख्यमंत्री ना प्रोजेक्ट करना भी बीजेपी की सफल रणनीति रही है। उनका कहना है कि ऐसा कर बीजेपी ने सभी जातियों के बीच भ्रांति फैलाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वैसे कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ पार्टी ने जातीय समीकरण को बैलेंस कर लिया, मगर क्षेत्रीय समीकरण अब भी असंतुलित हैं। मिसाल के तौर पर बुंदेलखंड को इस मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी का कहना है,
लेकिन जब बीजेपी नेतृत्व ने तय किया कि वो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो ठाकुर जाति से आते हैं, तो फिर उनको 2 उप मुख्यमंत्री देने पड़े, एक मौर्य और एक ब्राह्मण जो डॉक्टर दिनेश शर्मा, और इसके अलावा उन्होंने जो अपना बनिया या ट्रेडर कम्युनिटी से भी लिया है लोगों को, दलित मंत्री भी हैं मंत्रिमंडल में, और जो एक सबसे बड़ी कमी कही जा रही थी कि मुस्लिम समुदाय से कोई नहीं है, तो एक मुस्लिम मंत्री भी बनाया है। तो बीजेपी ने कोशिश करी है, लेकिन अभी क्षेत्रीय असंतुलन है और लोगों को उम्मीद है कि अगला जब विस्तार होगा तो उसमें क्षेत्रीय असंतुलन भी, जैसे बुंदेलखंड से कम मंत्री हैं, वो भी दूर हो जाए।
उग्र हिंदुत्व के पैरोकार की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के फौरन बाद ही बिल्कुल अलग नजर आए। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों को साफ तौर पर कह दिया कि जीत का जश्न हो, मगर एक हद के अंदर ही हो। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को ये भी कहा कि वो अनाप शनाप बयान देने से भी परहेज करें। 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ की छवि चाहे जैसी रही हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उनका एक दूसरा चेहरा सामने आया है। सलमान रावी, BBC लखनऊ।
योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक जरूरत के आधार पर संतुष्ट करने की कोशिश। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने शपथ ग्रहण के बाद बात की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने दिनेश शर्मा से और पूछा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता और चुनौतियां क्या हैं।
निश्चित रूप में हर कार्य चुनौती होता है, उस चुनौती को स्वीकार करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 325 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, उन 325 सीटों की संख्या ज्यादा है उतनी ही जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और हमारी इस ज्यादा जिम्मेदारी में हम उसका निर्वहन कैसे कर सकें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि आप सबके जो हमारी जनता ने हमसे आशा की है, संकल्प पत्र के माध्यम से हम उसको पूरा करने में हम सक्षम बनेंगे।
जी डॉक्टर साहब, आपने चुनौती और जिम्मेदारी दोनों की बात की। आपके विरोधी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का चेहरा है, खास तौर पर आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक छवि रही है खास, तो आपके विरोधियों का खास तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास लॉगिन आईडी है और हिंदुत्व उसका पासवर्ड है, यानी विकास अब हिंदुत्व का ही होगा, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों की जो आशंकाएं हैं वो चुनाव में भी रहा करती थी। बीजेपी का शासन जहाँ जहाँ हुआ है, हमने शुचितापूर्ण प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबके विकास के लिए जनहित में जो काम हो उनको करने का जो संकल्प लिया है अपने संकल्प पत्र में, हम सब उसको पूरा करेंगे। विपक्षी निश्चित रूप में निराश है और इसलिए वो सांप्रदायिक और विभिन्न आधारों के आधार पर आरोप लगा सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि हम अपने संकल्प पत्र के आधार पर सबको साथ लेकर बगैर क्षेत्र संप्रदाय जाति के पूरा काम कर सके उत्तर प्रदेश के विकास में, इसकी संकल्पना है हम लोग की।
जी प्राथमिकताएं तो आप लोगों ने गिनाई हैं, लेकिन शुरुआत आप कहां से करना चाहेंगे, क्या कुछ आपके एजेंडे में शुरुआत के दिनों में?
हमारी पहली कैबिनेट की बैठक निश्चित रूप में जल्दी शुभ दिन में होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद आपको खुद लग जाएगा कि हम लोग के काम करने की रफ्तार क्या है। प्रदेश में अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, विकास की रफ्तार तेज हो, लोगों को समान न्याय मिले, ये हमारी अभिकल्पना है और इसको पूरा करने के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप में प्रयत्न करेंगे।
ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक उग्र हिंदुवादी नेता की रही है। उनके तमाम भाषणों से इन बातों को हमेशा बल भी मिलता रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें इसी छवि के कारण ही तमाम लोगों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री बनाया है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखधाम पीठ के महंत हैं, उसके तीन ओर की आबादी मुस्लिम बहुल है, यहां तक कि मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ा कब्रिस्तान भी है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के ठीक बाद इन्हीं में से एक इलाके के लोगों से बात की।
योगी आदित्यनाथ के इलाके के जहां उनका गोरक्षपीठ धाम है, उसके ठीक पीछे ये इलाका है। इस मोहल्ले का क्या नाम है?
रसूलपुर
का इलाका है और ये बिल्कुल वहाँ से लगा हुआ है। यहाँ आप लोग कब से उनको सांसद बना रहे हैं?
अरे उनको तो सन 98 से ही बन रहे हैं वो।
यहाँ इस बस्ती में कभी आते हैं? कभी आए?
नहीं,
बतौर सांसद कभी आए कि नहीं?
नहीं, कभी नहीं आए।
कभी नहीं आए, फिर भी आप लोग उनको जिताते हैं?
अरे अब हम लोगों के बड़कुआ है तो कहाँ जाएंगे हम लोग?
सॉरी, क्या है?
हम लोग जाते हैं उनके पास।
कोई
बात होती है तो हम लोग जाते हैं, उसमें
पूरा सहयोग मिलता है। कोई तरह बात होती है तो दुख सुख में हमेशा वो खड़े होते हैं आदित्यनाथ।
लेकिन यहाँ पे कभी आते नहीं है?
आते नहीं है, मगर कोई काम रहता है तो बहुत आसानी से हो जाता है हम लोगों का।
वो हमेशा पड़ोसी वाले हिसाब से रखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जाते हैं तो कभी कोई काम होता है, सबसे पहले लोगों से पूछते हैं कि कैसे हैं। जैसे हम ही लोग, मान लीजिए हम लोग जैसे पहुंच गए, मुझे चौधरी नजमुद्दीन कहते हैं।
अच्छा।
तो जब हम लोग पहुंचते हैं, जैसे शकल देखा उन्होंने, तुरंत पूछते हैं कि चौधरी कैसे आना हुआ।
कोई जाके उनके से बात करे, उनसे मिले, अपना अर्ज मुद्दा रखे, अगर ना माने तब ऐसी बात कहे।
लेकिन जैसी उनकी एक इमेज बनी हुई है बाहर की, वो बड़े हार्ड कोर हिंदुत्व वाली हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं, इस तरह का यहाँ आपके इलाके में?
आपके इलाके में कभी इस तरीके कोई सोचा ही नहीं?
नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा है।
ये तो राजनीतिक है, उसमें तो होना ही है, थोड़ा बहुत
मीडिया ने ज्यादा बनाया।
अच्छा,
ऐसा है नहीं।
यहाँ के लोगों में इस तरह की कोई सोच नहीं?
नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है।
हिंदू मुसलमान का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब भाई भाई हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम यू जो नाथ है, वो हमको बहुत लगा कि कम से कम गोरखपुरी अब मेरा और आगे बढ़ जाएगा।
आप
बहुत खुशी है।
मुलाकात
तो सर नहीं हुई है। हाँ। मगर फिर भी हम ये हौसला करना चाहते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। लोगों के मुंह से सुना कि वो हिंदू या मुस्लिम, वो हर जात को अपना मानते हैं।
अच्छा, जो एक डेवलपमेंट की बात होती है, योगी जी इतने दिन से हैं लेकिन गोरखपुर में सड़कें वगैरह उनकी स्थिति बड़ी खराब है, तो ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? ये हम
लेकिन ऐसा है कि जो भी विकास के मामले हैं ये प्रदेश सरकार से होते हैं, प्रदेश सरकार ने विकास का काम इतना किया नहीं।
प्रदेश सरकार ने विकास का, अब उम्मीद है आप लोगों को कि आपके इलाके
का? जैसे एम्स है, फर्टिलाइजर है, अभी तक तो ये सब लोग कहते रहे ये घोषणा है इलेक्शन की, लेकिन अब हम लोगों को पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि अब ये तो काम तो फौरी तौर पर ये मुकम्मल होगा।
बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ऐसे में मुसलमान उनके ऊपर कितना भरोसा करता है?
ये इसके लिए खेत प्रकट करते हैं, इसके लिए जो है अफसोस है, ये खेत प्रकट करते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए था।
बड़े लोग कह चुके देना चाहिए था, राजनाथ सिंह ने कहा, नकवी ने कहा और मनोज तिवारी ने भी कहा कि टिकट ये गलती हुई है, टिकट देना चाहिए था मुसलमानों को, एक भूल हुई है।
अरे आज नहीं दिया गया तो अगली बार दिया जाएगा।
इन्हें ये पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा की नई सरकार विकास के कार्य करेगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
पिछले दो दिन से लगातार सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है। ये चर्चा भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पहुंची है और वसीतुल्लाह खान ने अपने चुटीले अंदाज में योगी आदित्यनाथ को भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर टिप्पणी की है।
पिछले दो दिन से सलीमुल्लाह हर किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा के मिल रहा है, क्यों ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं और सलीमुल्लाह स्कूल फेलो रह चुके हैं, मगर मैट्रिक के बाद सलीमुल्लाह ने पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिता मौलवी नसीबुल्लाह हमारे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे, उनकी सभी इज्जत करते थे क्योंकि वो मुसलमानों के दरमियान कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सबको कहते थे कि तुम भले शिया हो कि सुन्नी, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं, बस नमाज़ पढ़ा करो भले जैसे भी पढ़ो, और किसी भी गैर मुस्लिम के अकीदे को बुरा मत कहो, वो भी अल्लाह का बंदा है, और अगर वो तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचा रहा तो तुम भी उसे कोई दुख ना पहुंचाओ। कोई 10 वर्ष पहले मौलवी नसीबुल्लाह साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और उनकी जगह उनके बेटे सलीमुल्लाह ने संभाली, मगर सलीमुल्लाह में अपने बाप का शायद कोई भी गुण नहीं। वो हर जुमे को मेंबर पे बैठ के बिला हिचकिचाहट कहता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। सलीमुल्लाह का कहना है कि निर्णायक अल्पसंख्यकों को अगर इस धरती से इतनी ही मोहब्बत है तो उन्हें मुसलमान हो जाना चाहिए ताकि हम उन्हें इज्जत और एहतराम दे सकें। पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों की ज़मीन है। सलीमुल्लाह ने पिछले 7 वर्ष में शहर के 2 खाली मंदिरों को मस्जिद में तब्दील करने का कामयाब आंदोलन चलाया। उसने शहर के नौजवानों को ये दलील दे के जमा किया कि जब इन मंदिरों को पिछले 60 वर्ष से ताला लगा हुआ है तो क्यों ना इस जगह को पवित्र बना लिया जाए। शहर के हिंदू ट्रस्ट ने सलीमुल्लाह की इस हरकत को अदालत में चैलेंज कर रखा है, मगर सलीमुल्लाह कहता है कि किस माई के लाल में हिम्मत है जो इन मस्जिदों को अब मंदिर कह सके और इनका कब्जा ले सके। पिछले वर्ष सलीमुल्लाह की वाह वाह हो गई जब एक क्रिश्चियन लड़की को 4 हथियारबंद लोग ये कह के उसके पास लाए कि वो अपना धर्म बदलना चाहती है। सलीमुल्लाह ने उसे कलमा पढ़ाया और एक हथियारबंद के साथ उसका निकाह भी पढ़ा दिया। लड़की के ख़ानदान ने गुहार डाल दी कि इसका धर्म ज़बरदस्ती बदलवाया गया है, लेकिन सलीमुल्लाह का कहना है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, लड़की 20 साल की है और अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अब आप पूछेंगे कि सलीमुल्लाह को इतनी ढील क्यों मिली हुई है, तो इसका जवाब मुझसे नहीं, उन लोगों से लीजिए जिन्होंने पिछले चुनाव में उसकी धुआंधार तकरीरों और देश को तमाम काफिराना रिवाजों से पाक करने के लिए ज़िंदगी लगा देने के वादे पे वोट दे के उसे पहली बार सूबाई असम्बली में पहुँचाया। सलीमुल्लाह को बहुत कम लोगों ने हंसते हुए देखा है, हर शख्स मारे डर के उसकी इज्जत करता है भले पीठ पीछे कोई कुछ भी कहता रहे, मगर पिछले 2 दिन से सलीमुल्लाह में ये तब्दीली आई है कि वो हर किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा के मिल रहा है। मैंने कान में पूछा, खैरियत तो है सलीम भाई? कहने लगा, पूरी प्लानिंग कर ली है, पाकिस्तान प्योर मुस्लिम पार्टी ने कहा है कि अगर मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ तो अगले चुनाव के बाद मैं उनकी तरफ से चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार होंगा। मैंने कहा, सलीम क्या अब दिन में भी सपने देखने लगे हो? कहने लगा, क्यों, तुम क्या अखबार नहीं पढ़ते? अगर पड़ोसी देश के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्ट्री योगी आदित्यनाथ को मिल सकती है तो यहाँ मौलवी सलीमुल्लाह क्यों चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार नहीं बन सकता?
ये थी पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की साप्ताहिक डायरी। और अब एक नज़र डाल लेते हैं आज दिल्ली से निकलने वाले अखबारों पर। हरिता हमारे साथ स्टूडियो में है। हरिता, कल शपथ ग्रहण के दौरान यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनका एक नया चेहरा देखने को मिला, बहुत लोगों से घुल मिल रहे थे, अखबारों ने इसको कुछ तवज्जो दी है?
जी बिल्कुल, तवज्जो दी गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की उस तस्वीर की जिसे मैं कई अखबारों के पन्नों पर देख रही हूँ। इसमें मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री मोदी जो है एकदम हाथ पकड़े हुए खड़े हैं और मुलायम कुछ उनके कान में कह रहे हैं. और इसी पर जनसत्ता ने कार्टून भी प्रकाशित किया और लिखा है कि मुलायम शायद मोदी से ये कह रहे हैं कि जो बात मैं इसे नहीं सिखा सका वो आपने सिखा दी. उनका इशारा अखिलेश यादव की तरह की तरफ था. अखिलेश यादव पर जो है दैनिक जागरण ने लिखा है कि जो है वो वहाँ पर गए और उन्होंने काफ़ी घुल मिल के सबसे बातचीत की. 3 बार वो मुख्यमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ भी थपथपाई. और ये भी कहा गया है कि इसे देखकर जो है वहाँ पर काफ़ी नारे जो है भाजपा समर्थकों ने लगाए और ऐसा लग रहा था, अखबार लिखता है कि जैसे लोकतंत्र का जो ये पूरी जंग चली, जो उत्सव चला 2.5 महीने तक, उसमें जो है अंत में जो है मर्म का साक्षात्कार हुआ है.
चुनाव से पहले जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे,
तो ऐसा लग रहा था
जैसे धूल से गए.
जी, ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है अब वो अलग चीज़ है और ये एक आपस में मिलना जुलना, एक ऐसे मौके पर और इस तरह का जेस्चर देना, ये इस पर जो है अखिलेश यादव की
लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है.
जी, और अखिलेश यादव की भी इसमें जो है तारीफ हो रही है. अब बात मणिपुर की, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे. आज वहां बहुमत साबित करना है भाजपा सरकार को. जनसत्ता और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मणिपुर में इसी से पहले जो है आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो गई है. मणिपुर में जो नई सरकार आई है उसने यूनाइटेड नगा काउंसिल से बातचीत करने के बाद जो है ये उपलब्धि हासिल की है कि ठीक आज बहुमत परीक्षण से पहले जो है आर्थिक नाकेबंदी जो कि 139 दिनों से चल रही थी वो खत्म होने जा रही है.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए हरिता.
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी.
आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जाट समुदाय ने आज के लिए प्रस्तावित अपना दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया है. इसका ऐलान कल जाट नेताओं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई बातचीत के बाद किया गया. हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख यशपाल मलिक से बात की और सबसे पहले पूछा कि क्या ऐसा आश्वासन मिला खट्टर साहब से कि उन्होंने अपना जो मोर्चा था, जो मार्च थी उनकी, उसको स्थगित कर दिया.
देखिए, जो हमारी मांगे थी वे सभी मांगे मुख्यमंत्री और केंद्र के 2 मंत्री थे, उनसे वार्ता होने के बाद सभी मांगों पर सहमति बन गई. और सहमति बनने के बाद हमने जो दिल्ली का कूच था, आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, तो दिल्ली कूच होना था, जो हम लोग दिल्ली पहुंचने थे कई लाख लोगों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रोलियों से, वो कूच स्थगित कर दिया गया है. और क्योंकि अभी हमारे पूरे प्रदेश में धरने हैं तो उसको वापस करने में काफी टाइम लगेगा और सभी धरनों पे मुझे निजी रूप से जाना पड़ेगा. उसके लिए हमने अभी 26 तारीख को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है और तब तक हम सभी धरनों पे जाके आ जाएंगे.
केंद्र और राज्य सरकार से आपको आश्वासन मिला क्या है, क्या क्या मांगे हैं जो मान ली गई हैं?
देखिए, एक तो हमारा केंद्र का और प्रदेश के आरक्षण का मामला था, तो दोनों पे आश्वस्त कर दिया गया है कि वो दोनों रिजर्वेशन जाट समाज को मिलेंगे, केंद्र का भी और प्रदेश का भी. और दूसरी मांग हमारी मुकदमों से संबंधित थी, जिसपे उन्होंने आश्वस्त किया है कि मुकदमों का जो रिवीजन है वो होगा. और तीसरा जो मांग थी हमारी, जो इसमें आंदोलन में शहीद हो गए हैं उनके परिवार को नौकरी देने का था, वो नौकरी की भी, गवर्नमेंट नौकरी की बात हो गई है. और जो घायलों को मुआवजा मिलना था उसकी भी बात हो गई है. ये सभी 4-5 मुख्य मांग थी जिन पे हम लोगों की सहमति आज बन गई और एक टाइम फ्रेम म्यूचुअली कर लिया गया, तो उसके बाद जो है हमने ये दिल्ली कूच का कार्यक्रम वापस लिया.
क्या टाइम फ्रेम है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं?
टाइम फ्रेम में उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स कहे हैं जो 2-3-4 दिन में डिसाइड कर लें, तो डिसाइड करने के बाद वो हमें बता दें कि किस काम कितना टाइम लगना है.
ये थे जाट नेता यशपाल मलिक. और अब सुनिए हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी.
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त. इस अंक में समीक्षा. रांची में रोमांचक हो चले भारत ऑस्ट्रेलिया मैच की. शशांक मनोहर ने छोड़ा आईसीसी का साथ और बांग्लादेश ने अपने 100वें टेस्ट मैच को बनाया और भी यादगार. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच ने कल 4थे दिन का खेल समाप्त होते होते करवट बदल ली. एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच अब बस ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कल जब खेल समाप्त हुआ तब दूसरी पारी में 23 रन तक पहुंचते ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 विकेट खो दिए. लिए डेविड वार्नर 14 हैं और नाइट वॉचमैन नाथन लियन केवल 2 रन बनाकर खब्बू स्पिनर रविंद्र जडेजा की गेंद पर बोल्ड हो गए। पहली पारी के आधार पर भारत को 152 रनों की बढ़त मिली थी और अभी भी ऑस्ट्रेलिया 129 रन पीछे है और हार का खतरा सामने खड़ा है। जान बचाने के लिए हालांकि 8 विकेट बाकी है। मैट रनशा 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहली पारी में बनाए गए 451 रनों के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 603 रन के स्कोर पर कल समाप्त घोषित की। चेतेश्वर पुजारा और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने जो किया उसकी तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्रिकेट कितना अनिश्चितताओं भरा खेल है इसका अंदाजा शायद क्रिकेट पंडित भी नहीं लगा पाते। तभी तो काले रंग की मिट्टी वाली पिच देखकर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा था कि रांची की ये पिच भयानक है और इस पर 250 या 275 का स्कोर ही काफी होगा, ऐसे में टॉस जीतना निर्णायक होगा। शेन वॉर्न के अलावा भारत के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह भी पिच देखकर धोखा खा गए।
पहला ऑस्ट्रेलिया ने जीता खराब पिच के ऊपर, दूसरा इंडिया ने जीता। मैंने थोड़ी सी शक्ल देखी है इस पिच की, मुझे लग रहा है कि ये भी पिच 3-3.5 दिन वाली पिच है, टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा।
अब भला जिस पिच पर पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान नाबाद 178 और ग्लेन मैक्सवेल 104 रन बनाए तो वो भयानक कैसे हो सकती है। और उसके बाद उसी पिच पर भारत के चेतेश्वर पुजारा ने अपने चित को एकाग्रचित कर तमाम ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को चित करते हुए 525 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से दोहरा शतक जमाते हुए 202 रन की पारी खेली। पुजारा से पहले राहुल द्रविड़ ने 495 गेंदों की लंबी पारी खेली थी। पुजारा का साथ देते हुए रिद्धिमान साहा ने भी 117 रनों की शतकीय पारी खेली। पुजारा और साहा ने 7वें विकेट के लिए 199 रन भी जोड़े। तो अब साबित हो गया है कि पिच को लेकर हुई किच-किच बेवजह थी। क्रिकेट समीक्षक अयाज बेवन भी ऐसा ही मानते हैं।
देखिए बिल्कुल बेवजह अब नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से ये मैच डेवलप हुआ है, पहले टॉस जीत के ऐसे लगा कि बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, मिला भी क्योंकि 450 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन फिर इंडिया के लिए शानदार डबल सेंचुरी बनाई चेतेश्वर पुजारा, एक सेंचुरी बनाई वृद्धिमान साहा, और मैं मानता हूं कि इसी वजह से आज इस स्थिति में है कि ये मैच इंडिया जीत सकती है क्योंकि 2 विकेट खो दिए ऑस्ट्रेलिया ने। और ये नहीं है कि पिच कोई ज्यादा हरकत करे, कर भी सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से ये मैच हार सकती है।
तो रांची के विकेट ने अब दिखाया अपना असली रूप और रंग, जिसे देखकर उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के चेहरे का रंग उतरा लग रहा है जिस पर वो पहली पारी में जमकर खेलकर इतरा रही थी। उधर बीते बुधवार को बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर आईसीसी के भी पूर्व चेयरमैन हो गए। दरअसल उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी को आधार बनाकर इस्तीफा दिया। वैसे तो क्रिकेट के पिच पर खिलाड़ी ही हिट विकेट या रिटायर हर्ट होते हैं, अधिकारी नहीं। अब शशांक मनोहर के आईसीसी छोड़कर जाने की क्या वजह मानी जाए, क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं।
जो फैसला ये आईसीसी ने लिया है कि जो रेवेन्यू मॉडल श्रीनिवासन के टाइम पे बना था, जिसमें बिग थ्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को फेवर किया गया था और इंडिया के हिस्से में पैसे भी ज्यादा दिए गए थे, उसको चेंज किया जा रहा है। तो इंडियन होने के नाते शायद वो डर रहे हों कि ये डिसीजन इंडिया में पसंद नहीं किया जाएगा और उनकी बदनामी होगी, तो ये अटकलें लगाई जा रही, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया।
वहीं बांग्लादेश ने कल मेजबान श्रीलंका को कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन 4 विकेट से मात देकर अपने 100वें टेस्ट मैच को यादगार बनाया। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 191 रनों का लक्ष्य था जो उसने सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल के 82 और शब्बीर रहमान के 41 रन की मदद से 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कल लखनऊ में शपथ ले ली। अमेरिका की कांग्रेस की खुफिया कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो नहीं मानते कि पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप हुआ था। सीरिया की सेना ने कहा है कि दमिश्क में विद्रोहियों के एक हमले को नाकाम कर दिया गया है। दमिश्क के जोबार जिले में सबसे तेज लड़ाई हुई है जिसमें सेना और विद्रोहियों के अलग अलग गुट शामिल थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सरकार में अपने गठबंधन सहयोगी और वित्त मंत्री मोशे कहलान के साथ हुए समझौते से वो पीछे हट गए हैं, जिससे इसराइल में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। घाना में पुलिस के मुताबिक एक झरने में तेज बारिश के कारण बहकर आए पेड़ के नीचे दबकर 17 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की पल पल बदलती खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।